भागवत सार के इस श्रृंखला में आज पहले स्कंध के आखिरी अध्याय 19वें अध्याय पर चर्चा है। तो इस अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। कृपया दोहराएंगे। सूत उवाच महीपतिस्त्वत्तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि महीपतिस्त्वत्तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयानात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि महीपतिस्त्वत्तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि सुत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा तू लेकिन अथ इस प्रकार घर वापस आते समय तब उस कर्म कार्य गर्हिम घृणित विचिंतयन सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनमना या उदास अहो अहो मया मेरे द्वारा नीचम जघन्य अनार्य असंस्कृत या असभ्य वत्सदृश वत् सदृश कृतम किया गया निरागसी निर्दोष ब्राह्मणी ब्राह्मण के प्रति गूढ़ गंभीर तेजसी शक्तिमान। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वह अत्यंत उदास था। तात्पर्य, पवित्र राजा शक्तिमान तथा निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से अत्यंत दुखी हुआ। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राभिपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणारुत्कंठयोस्वरा। हरे कृष्ण। तो कल 18वें अध्याय में चर्चा ये की कि कैसे परीक्षित महाराज ने भगवान की योजना से एक अपराध कर लिया और फिर ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होगी। तो अब वो जो अपराध उनसे हो गया उसका स्मरण करते हुए उसका चिंतन करते हुए परीक्षित महाराज अब अपने राज्य को लौट रहे हैं। अर्थात जिस समय उनसे ये अपराध हुआ प्रभुपाद लिखते हैं कि असामयिक था, ऐसा नहीं था कि होना चाहिए था लेकिन हो गया। ये परीक्षित महाराज चाहते थे लेकिन ये हो गया भगवान की योजना से, और इसीलिए बाद में चिंतन करने लगे परीक्षित महाराज कि मुझसे ये कैसे पाप हो गया। प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, पवित्र राजा से शक्तिमान और निर्दोष ब्राह्मण के प्रति अपराध हो गया। तो राजा पवित्र था और ब्राह्मण निर्दोष था, लेकिन फिर भी अपराध हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि योजना भगवान की थी। हाँ, अगर राजा दोषी होता, राजा अधर्मी होता, या फिर ब्राह्मण इसने दोष किया होता, तब तो बात ठीक थी कि अपराध नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे राजा पवित्र था, पवित्र अर्थात वो कोई अपराध कर नहीं सकता था, अनजाने में हो गया है, और ब्राह्मण भी निर्दोष था। तो अब इसका चिंतन करते हुए परीक्षित महाराज आ रहे हैं, सोच रहे हैं ये मैंने क्या किया, क्या मैंने ब्राह्मण के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसका क्या फल होना चाहिए इत्यादि। तो ये चिंतन करते हुए वो अपने घर पे लौट रहे हैं और बड़े उदास हैं। उदासी ये किसका लक्षण है? वो क्यों उदास हैं? क्योंकि उन्हें ग्लानि हो रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए उदास हैं। जिस व्यक्ति को ग्लानि नहीं होती, अपराध करके, अनर्थ करके, कोई उसको ग्लानि नहीं होती, वो सोचता है मैं सही कर रहा हूँ, वो पवित्र नहीं हो सकता। तो क्योंकि राजा पवित्र हैं, इसीलिए ऐसे गलती करके उनको ग्लानि हो रही है, उदास हो गए वो कि मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह से परीक्षित आ रहे हैं। तो पहले श्लोक से लेकर करीब सातवें श्लोक तक हम लोग देखेंगे कि कैसे परीक्षित महाराज अपने किए पर दुखी होते हैं, समाचार मिलता है, और फिर वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, हम सबको बहुत सुंदर शिक्षाएं देता है। तो परीक्षित महाराज गए, पहुंचे, और फिर वो वर्णन करने लगे, वो सोचने लगे कि क्या 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 मैंने कर दिया, और फिर कहने लगे धिक्कार है मेरे ऊपर, मुझे दंड मिलना चाहिए। क्यों दंड मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने अपराध किया है, और दूसरा आगे मैं कभी अपराध ना करूं। तो एक तो अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि दंड मिलना चाहिए मुझे, और दूसरा ताकि मैं आगे कभी अपराध नहीं करूं, क्योंकि अगर मुझे दंड नहीं मिला तो हो सकता है मैं फिर से ऐसा अपराध कर बैठूं ब्राह्मणों के प्रति। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे दंड मिलना चाहिए, ये जो भी मेरा राज्य है, ये संपत्ति है, ये जलकर समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसी के कारण, इसी आसक्ति से, इसके अहंकार में मैंने ऐसा अपराध कर दिया, इसलिए जलकर नाश हो जाए ये सब। राजा ऐसा सोच रहे हैं, वर्णन अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। और उतने में उनको सूचना मिलती है कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं। वैसे ऐसा कहा गया कि जब तक राजा अभी अभी कली, कुछ समय पहले उन्होंने कली को स्थान दिया था सोने का, सोने में, स्वर्ण में रहना, और उन्होंने मुकुट पहना हुआ था सोने का, स्वर्ण का, तो इसीलिए कली का प्रभाव चल रहा था, कली ने उन्हीं को प्रभावित कर दिया। घर जाके जैसे ही उतारा तो उनको याद आया कि गलती की। ऐसा एक एक भक्त टीका करते हैं, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। तो परीक्षित महाराज तो वो सोचने लगे, उनको सूचना मिल गई, और जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूं, बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए वो। क्यों? पहला कारण, शायद वो उस समय ब्रह्मांड में एक व्यक्ति होंगे जिनको ये सूचना मिली कि कब मरने वाले हैं। वैसे किसको सूचना मिलती है? व्यक्ति अचानक मर जाता है, लेकिन उनको सूचना मिल गई तुम 7 दिन के बाद तक्षक आएगा, तो कैसे मृत्यु होगी, कब मरोगे, ये सब बता दिया। परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। पहला प्रसन्नता ये थी, दूसरी प्रसन्नता ये थी कि अब वो पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ले सकेंगे, तो इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया। कुछ समय नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा चलो सारी व्यवस्था करूं, अभी 7 दिन है उसमें और धन इकट्ठा कर लूं, किसी एकाध राजा का वध कर दूं ताकि मेरा गुणगान बढ़े। नहीं, तुरंत सब कुछ त्याग दिया, गंगा के तट पर चले गए और वहां जाकर बैठ गए, श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। तो ये प्रसंग हम सबके लिए बड़ा शिक्षा प्रदान करने वाला है कि व्यक्ति को, जो भक्त होता है शुद्ध भक्त, उसको भगवान का स्मरण अंत में होता है, जैसे परीक्षित महाराज को हुआ। तो परीक्षित महाराज बड़ी दृढ़ता से अब अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया बाकी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जीवन के अंत में दृढ़ता से अपना मन बस कृष्ण में लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए जीवन भर तैयारी, क्या तैयारी करनी चाहिए, परीक्षित महाराज के जीवन से हमें सीखना है कि परीक्षित महाराज ने जो दर्शाया उसको अगर हम बच सकें तो हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं जीवन के अंत में। सबसे पहले उन्होंने घर को त्याग दिया सही समय पर, जैसे ही पता चला बस मृत्यु होने वाली है, कुछ नहीं देखा। तो ऐसे ही व्यक्ति को घर का त्याग सही समय पर कर देना चाहिए, उसमें फंसे नहीं रहना चाहिए घर में, क्योंकि क्या पता कितना समय हमारे पास है। तो इसलिए घर का त्याग सही समय करना चाहिए। दूसरा, हमें अपराध नहीं करने चाहिए जीवन में। परीक्षित महाराज ने कर दिया अपराध, लेकिन हमें अपराध नहीं करने चाहिए। दरअसल उस प्रसंग से हम लोगों को ये सिखलाया जा रहा है कि हमें जीवन कैसे बिताना है, तो हमें कोई भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, जीवन भर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तब जीवन के अंत में हम भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसीलिए अब परीक्षित महाराज बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो चले गए गंगा के तट पर और जाकर क्या किया, उन्होंने याचना की ऋषि मुनियों से कि आप कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो ऐसी उन्होंने याचना की। एक भक्त को जीवन के अंत में याचना करनी चाहिए। क्या याचना? अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जिस समय अपना देह त्याग रहे थे, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। उसका कारण ये था कि वो दर्शाना चाहते थे कि कैसे जीवन त्यागना चाहिए, कैसे देह को त्यागना चाहिए। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सारे गुरु भाइयों को, जो भी वहाँ पर थे, जो आ सके उनको बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। उनसे कहा कि प्रचार के समय में हो सकता है मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हों, आप सबके प्रति अपराध कर दिया हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उनके गुरु भाई तुमको कह रहे थे कि कोई अपराध नहीं आपसे स्वामी जी, आपसे कैसे अपराध हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद उस समय सबसे क्षमा मांग रहे थे कि मैं प्रचार के समय बहुत कुछ कह दिया, बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो देखिए ये परीक्षित महाराज भी अपने उदाहरण से ये दिखला रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने जो कार्य किया, इससे हमें सीखना है कि जीवन के अंत में हमें कैसे, क्या भाव में होना चाहिए। तो क्षमा याचना कर रहे हैं और अधिकारियों से, अपने वरिष्ठों से, ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, बताइए मैं क्या करूं। और साथ ही साथ वो कृष्ण कथा सुनने में रुचि भी उत्पन्न कर रहे हैं। और अपनी इस अवस्था को वो एक वरदान मांग रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये देखिए, ये भक्त का गुण है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसी अवस्था हो गई मैंने इतनी मेरी, नहीं, उसको वरदान माना। तो मृत्यु के समय हमारी जो भी अवस्था हो उसको वरदान मानना चाहिए कि हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने किया। फिर 8वें श्लोक से लेकर करीब 24वें श्लोक तक परीक्षित महाराज सभी जो वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनको उनसे याचना करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, वर्णन करते हैं, अपना वर्णन करते हैं। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत से महत्वपूर्ण गुणों को प्रकट करते हैं भक्तों के। सबसे पहली नम्रता, वो नम्रता को प्रकट करते हैं। दूसरा, कृष्ण में पूर्ण विश्वास को प्रकट करते हैं। और तीसरा, कृष्ण कथा में रुचि को वो प्रकट कर रहे हैं। कैसे? वो बड़ी नम्रता से कहते हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं, अर्थात जो राजकाज करने वाले क्षत्रिय हैं, आप लोग तो उनको, ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, आप लोग तो उनको एक व्यर्थ मानते हैं, आप लोग कभी उनसे संग नहीं करना चाहते, लेकिन आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आज आप सब आए हैं। और कौन कौन आए थे, भागवत में वर्णन है। बड़े बड़े ऋषि, जैसे ही सबको पता चला कि परीक्षित अब सब कुछ त्याग कर, खाना पीना त्याग कर, आमरण अनशन उन्होंने कर दिया है, मृत्यु तक अब वो कुछ खाएंगे नहीं, उन्होंने व्रत ले लिया है, तो सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आए देखने के लिए। व्यास देव आए, परशुराम जी आए, सब आए वहां पर। किस लिए? ये देखने के लिए कि देखो परीक्षित अब इतना महान व्यक्ति, इतना महान भक्त कैसे अपना देह त्यागता है। तो वहां पर सब आए, नारद मुनि आए, काफी लोग वहां पर आए। तो उस समय परीक्षित ने सबको बहुत नम्रता से प्रणाम किया कि आप लोग तो हम लोगों को बहुत व्यर्थ मानते हैं ही, हम लोग तो व्यर्थ हैं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा है कि आप मुझे इस समय संग देने आए हैं आपका। तो सबसे पहला गुण नम्रता को प्रकट कर रहे हैं परीक्षित महाराज। उस समय भी, मृत्यु के समय भी उन्होंने नम्रता को प्रकट किया। और फिर वो कहते, ये जो स्थिति मेरे साथ हुई है ये सही है एकदम, मैंने जो किया था उसका मुझे यही फल मिलना चाहिए, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पर हूँ आप सबके साथ में और मैं कृष्ण कथा सुन सकता। तो उन्होंने विश्वास दिखलाया कि भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं, भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। और साथ ही साथ परीक्षित महाराज ने याचना की कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ वो रुचि प्रकट कर रहे हैं, नम्रता है उनके अंदर, विश्वास है कृष्ण में और रुचि है कृष्ण कथा में। तो देखिए, ये भक्त के लक्षण है, नम्र होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण जहां भी हमें रखें, जैसे भी रखें, जिस अवस्था में रखें, ये भगवान की कृपा है। और रुचि किस में होनी चाहिए? कृष्ण कथा में। तो उन्होंने कहा बस आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। और इच्छा क्या जाहिर की? वो इच्छा करते हैं कि बस मेरी यही इच्छा है कि अगर मुझे और एक जन्म मिले, परीक्षित महाराज कहते हैं, मतलब अगर मिले, यानी वो जानते हैं कि उन्हें मिलेगा नहीं और एक जन्म, लेकिन कृष्ण चाहे तो मिल सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे और एक जन्म मिले तो मेरी यही इच्छा है कि मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त हो और सभी जीवों से मैं मित्रता कर सकूँ। ये तीन चीज़ें मांगी उन्होंने, ये उनकी इच्छा है। तो देखिए, भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या इच्छा हमें करनी चाहिए। उन्होंने इस समय पर भगवान के धाम को नहीं मांगा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ये भी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊं अगले जन्म में, सब मेरा संग करें, नहीं, अगर अगला जन्म मिले तो मुझे कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, भक्तों का संग मिले और सभी जीवों के प्रति मैं मित्रता स्थापित कर सकूं, बस। अगर ये मिल जाए तो मुझे अगला जीवन लेने में भी कोई कष्ट नहीं। तो देखिए भक्तों के कितने अच्छे लक्षणों को परीक्षित महाराज यहाँ अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हम सबको सीखना चाहिए। तो ऐसे परीक्षित महाराज वर्णन करने लगे कि कैसे अंतिम समय में फिर उन्होंने सारे ऋषि मुनियों से प्रश्न किया कि अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां और एक महत्वपूर्ण भक्ति के सिद्धांत को प्रकट कर रहे हैं कि मृत्यु के समय भी वो अपने आप को किसी अधिकारी के अधीन रख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए मुझे। तो भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग यही है कि जो भी किया जाए गुरु की अनुमति से किया जाए, पूछ कर किया जाए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शिनः। तो एक भक्त को नम्र होना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। परीक्षित महाराज जीवन के अंत में भी वही कर रहे हैं, बड़े नम्र हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि बताइए, आप बताइए। और जब ऐसी नम्रता, ऐसी जिज्ञासा एक शिष्य प्रकट करता है तब फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं, जो गुरु हैं, जो भक्त हैं, तब ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो ऐसे बड़ी नम्रता से वो सबसे पूछने लगे कि आप बताइए कैसे कैसे उस हरेक जीव के लिए क्या कर्तव्य है, और विशेष करके उसके लिए जो मरने वाला है। जो नहीं मरने वाला है उनके तो छोड़ दीजिए, अमर लोग हैं जो नित्य सिद्ध हैं उनका तो कहना ही क्या, उनके लिए कोई कर्तव्य के नहीं पूछ रहा हूं। जो मरने वाला है तो मरने वाले का अर्थ यहां ये नहीं लेना चाहिए कि बस जो डेथ बेड पर है, मतलब जो मरने ही वाला है, जो अभी बस कुछ सांसें बाकी। नहीं, मरने वाले मतलब हम सब, मर्त्यानाम किम उताशिषः, हम सब मरने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विशेष करके उनके लिए बताइए जो मरने वाले हैं। तो हम सब के लिए क्या कर्तव्य है? तो जब ये ऐसी बातें हो रही थी तो उस समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। तो ये 25वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी के आगमन का वर्णन किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए। सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, बहुत सुंदर थे, दिगंबर, अर्थात उन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बनाया हुआ था। और बहुत सुंदर उनका वर्णन किया गया है, कैसे चरणों से उनका वर्णन प्रारंभ किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं भगवान इत्यादि या भगवान के भक्त, उनका उनका वर्णन चरणों से प्रारंभ होता। तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी, बहुत सुंदर थे, उनके सारे जो अंग थे बहुत कोमल थे, 16 वर्ष के बालक थे और बहुत सुंदर, चौड़ी छाती, नयन जो उनके कमल के समान, वर्ण बहुत सुंदर श्याम वर्ण, ऐसे उनके वर्ण का वर्णन किया गया। तो ऐसा उनका वर्ण बहुत सुंदर वो लग रहे थे, और इतना ही नहीं बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि जब वो हस्तिनापुर में आए इतने सुंदर थे कि सब लोग प्रभावित हो गए। भागवत वर्णन करता है कि देवताओं के भी जो तेज है उसको वो परास्त कर रहे थे, इतना उनका तेज था, इतना उनका सौंदर्य था, बहुत सुंदर थे। तो उस समय जितने भी वहां बच्चे थे पीछे पीछे चल दिए, स्त्रियां भी चल दी पीछे पीछे उनके। और ऐसे जब वो इस सभा में आए, इन ऋषियों की सभा में अचानक आ गए और सब ने उठकर प्रणाम किया उनको। प्रभुपाद कहते हैं कि व्यासदेव, नारद मुनि और कुछ ऋषियों को छोड़कर सब ऋषियों ने उठकर प्रणाम किया। तो ये बताने का तात्पर्य क्या है, अब जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे तो नारद व्यास सब बैठकर सुनने वाले हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। और सुखदेव गोस्वामी को सबने प्रणाम किया। प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि इतने सारे ऋषि मुनि वहां थे लेकिन सबने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा प्रणाम करने योग्य होता, भक्त गुणगान करने योग्य होता, उसको सदैव आदर देना चाहिए। तो सारे ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने प्रवेश किया, सबने प्रणाम किया उनको और सुखदेव गोस्वामी आए। तो जब बच्चों और स्त्रियों ने देखा जो पीछे पीछे आ रहे थे उनके, कौन है ये बालक, कौन है ये, तो उन्होंने देखा अरे अरे ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। इतने सारे ऋषि मुनि, सोचिए वहां कितने ऋषि मुनि आए हुए थे गंगा के तट पर। परीक्षित महाराज को उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम 7 दिन तक यहीं रहेंगे, जब तक परीक्षित देह नहीं त्यागेंगे हम यहीं रहेंगे।
क्यों?
क्योंकि वो जानते थे कोई तो महत्वपूर्ण बात होगी भक्ति से संबंधित, एक भक्त अपना देह त्याग रहा है। तो सारे लोग आए थे, तो जब उन्होंने सबने प्रणाम किया तो स्त्री और बच्चों ने देखा अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे कोई ऐसे बालक घूम रहा है, ये तो कोई बहुत महान व्यक्ति है। तो सब तुरंत वहां से चले गए, अरे अरे हमने कुछ गलती ना हो जाए हमसे। तो उस समय फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बड़ी नम्रता से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग आप इस समय मेरे ऊपर आए हैं निश्चित ही कृपा है, क्योंकि आप तो किसी के घर में गोदोहन, गाय दोहने तक बस उतना ही रुकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रुकते हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा गया है कि वो कहीं किसी गृहस्थ के घर में चले जाते थे तो जब तक गाय दोहने में समय लगता था बस उतना रुकते थे। मान लो कि जाते जाते उन्होंने सोच लिया चलो गाय दो रहे हैं तो दूध पीते हुए चले जाए, बस इतना ही रुकते थे। तो ऐसे, लेकिन आज सुखदेव गोस्वामी ने आसन ले लिया, स्थिर बैठ गए। भागवत में वर्णन है कि वो स्थिर बैठ गए मतलब आसन स्वीकार कर लिया। आज वो जाएंगे नहीं गाय दोहने के समय होने के बाद, या गाय दोहने तक नहीं रुकने वाले हैं, आज वो बैठ गए क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब वो 7 दिन तक बोलने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज ने उनका स्वागत किया कि आप जैसे लोग हम पर केवल कृपा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और आप ऐसे समय में आए हैं, निश्चित भगवान की मुझ पर कृपा हुई। तो एक महत्वपूर्ण बात परीक्षित महाराज ये समझाते हैं कि अगर भक्त मृत्यु के समय भक्तों का संग है या कभी भी हमारा भक्तों का संग है तो ये सीधे भगवान की कृपा। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप यहां इस समय आ गए हैं निश्चित ये भगवान की कृपा, नहीं तो होता नहीं। श्री कृष्ण मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार किया अपने संबंधी के रूप में केवल पांडवों पर कृपा करने के लिए, मेरी कोई योग्यता नहीं। और आज आप यहां आए हैं ये भी उनकी कृपा है, मेरी कोई योग्यता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं तो सुखदेव गोस्वामी को तो आना ही था, नहीं, भगवान की कृपा। तो ये जान लीजिए कि भक्तों का संग जीवन में किसी भी समय हो वो प्रत्यक्ष कृपा है भगवान की। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए अरे भगवान मुझ पर कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, कर चुके हैं, भक्तों का संग दे दिया है, प्रत्यक्ष सीधे कृपा है भगवान की। फिर ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं भगवान की कृपा मतलब कुछ और होगा, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, चतुर्भुज रूप होगा, कहेंगे वरदान मांगो और मैं कहूंगा कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है जल्दी से करा दीजिए, ये वरदान है या धन नहीं है, नहीं, वरदान दे चुके हैं, कृपा हो चुकी है। तो इसको परीक्षित महाराज समझा रहे हैं कि भक्तों का संग प्राप्त करना मतलब ये भगवान की सीधे कृपा। तो भगवान अपनी कृपा भक्तों के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने उनसे कहा और फिर जिज्ञासा की परीक्षित महाराज ने। परीक्षित ने कहा कि आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो बस मरने वाला है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो क्या कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति के लिए आप कृपया बताइए। तो ऐसा वर्णन उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के लिए किया, सुखदेव गोस्वामी से कहा और सुखदेव गोस्वामी अब बोलने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न पर जब ये सारा वो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज, भागवतम का पहला स्कंद समाप्त तो होता है 19वां अध्याय। और अब दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ करेंगे। तो तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है, ये अध्याय भी विशेषतः महत्वपूर्ण है कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। भक्तों का आगमन हमारे जीवन में केवल शुभ कार्यों के लिए ही होता है, अर्थात अगर भक्तों का आगमन जीवन में हो गया तो उससे शुभ और कोई चीज़ नहीं है, इसको हमें जानना चाहिए। इसीलिए इस अध्याय का नाम दिया गया है सुखदेव गोस्वामी का आगमन, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक शब्द नहीं बोलेंगे, केवल अध्याय के प्रायः अंतिम भाग में, दूसरे भाग में वो प्रवेश करते हैं, केवल बस आते हैं, लेकिन ये आना ही इतना महत्वपूर्ण है कि इस अध्याय को नाम दिया गया सुखदेव गोस्वामी का आगमन। तो इसीलिए इस अध्याय से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। सबसे पहला कि मृत्यु हमारी परीक्षा है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन मिले, हमें नहीं पता हमारे पास 7 दिन हैं या नहीं है, इसलिए हमें कैसी तैयारी करनी है, जैसी तैयारी परीक्षित महाराज ने दिखलाई, नम्रता होनी चाहिए, गुरु को समर्पण होना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, कृष्ण कथा में रुचि होनी चाहिए, ये हमारी तैयारी है, ताकि अंत में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब अपना ये कलेवर जो ये शरीर त्याग रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण हो सके। इसीलिए आवश्यक है हम सबके लिए कि हम परीक्षित महाराज के इस प्रसंग से इन सबको सीखें कि कैसे हम जीवन के अंत में अपने देह को त्यागेंगे, और उस समय हमें पूर्ण अनासक्त होना होगा, आज से अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है तो अंत में नहीं होगा कि पूर्ण रूप से हम सब कुछ छोड़कर कृष्ण में लग सके। वैसे जीवन के अंत में यही करना चाहिए, जीवन के अंत में पूर्ण रूप से केवल कृष्ण कथा और कुछ नहीं, व्यक्ति को बाकी सब चीजों को त्याग देना चाहिए, लेकिन इसका अभ्यास हमें अभी से करना चाहिए। तो अभ्यास क्या है, अपराध करना बंद करें, हम प्रयास करें किसी भी जीव के प्रति, विशेषतः किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करें। दूसरा, श्री कृष्ण का स्मरण बढ़ाने के लिए उनकी कथा, उनके नाम में रुचि उत्पन्न करें, ये हमारे लिए अभ्यास है इस जगत में, इस जीवन में, इसको अभ्यास करें कि जितना हो सके कृष्ण के नाम में रुचि बढ़ाएं और कृष्ण की कथाओं में रुचि बढ़ाएं। और तीसरा, हमेशा गुरु के अधीन रहें, जैसे परीक्षित महाराज जीवन के अंत में भी पूछ रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं, बस अब मेरी मृत्यु होने वाली है, आप बताइए क्या करना। तो यहाँ भी वो पूछ रहे हैं, अपने मन से कार्य नहीं, मतलब जीवन के अंत तक गुरु के अधीन रह रहे हैं, एक अधिकारी से पूछकर जीवन चला रहे हैं। तो अगर हम ऐसा जीवन चलाते हैं तो निश्चित हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण को प्राप्त करके अपने देह को त्यागेंगे। तो इस प्रकार ये पहला स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारंभ हुआ नैमिषारण्य में, ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रश्न किए सुत गोस्वामी से, फिर सुत गोस्वामी ने उन प्रश्नों का उत्तर दूसरे और तीसरे अध्याय में दिया, दिव्यता और दिव्य सेवा के द्वारा, और कृष्ण ही सारे अवतारों के स्रोत हैं, उत्स हैं, इसको उन्होंने बताया। तो तीसरे अध्याय में बहुत से अवतारों का वर्णन किया, फिर परिभाषा सूत्र भागवतम का उन्होंने कहा, एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। और फिर उसके बाद और 4 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने, शौनक ऋषि ने, कि क्या कैसे बताइए भागवत कैसे प्रकट हुआ इत्यादि। तो फिर उसको कहने के लिए व्यासदेव की कथा कही, तो फिर 5वें अध्याय 6वें अध्याय में व्यासदेव की कथा चली कि कैसे व्यासदेव को उपदेश दिए। 4वें अध्याय में तो केवल नारद मुनि आए, 5वें और 6वें में उन्होंने 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम पर उपदेश दिए। फिर 6वें अध्याय में उनका संवाद रहा नारद मुनि के साथ, और फिर 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र, तो जब भागवतम प्रारंभ हुई तो भागवतम के लिए प्रश्न किए गए थे, तो उनको उन्होंने प्रारंभ करना शुरू किया परीक्षित महाराज के जन्म की कथा से, और जन्म की कथा कहने से प्रारंभ किया कि कब कैसे जन्म हुआ, तो फिर द्रोण पुत्र को दंड, सातवें अध्याय में उत्तरा भाग कराई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, आप कृपया क्षमा की बचाइए बचाइए, आपके नान्यत पश्येत, और कोई नहीं है आपके बिना जो मेरी रक्षा कर सके। एक जलता हुआ लोहे का टुकड़ा, लोहे का तीर मेरी ओर मेरे गर्भ को समाप्त करने आ रहा है, मेरी जान चली जाए लेकिन गर्भ की रक्षा कीजिए। तो फिर उस समय भगवान ने रक्षा की, और फिर सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के जन्म की कथा को छोड़कर कृष्ण कथा पर मुड़ गए। कृष्ण का नाम आया, वो कृष्ण कथा पर मुड़ गए। तो फिर उन्होंने कहा कृष्ण ने रक्षा की, कुंती महारानी ने तुरंत प्रार्थनाएं कर दी। आठवें अध्याय में कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। तो फिर ऐसे कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर और एक विशेष उद्देश्य से वो वहां रुक गए, और फिर वो उद्देश्य की पूर्ति नवे अध्याय में होती है, जहाँ भीष्म देव अपना देह त्यागते हैं। तो भीष्म देव ने ज्ञान दिया, देह त्यागा, भगवान ने अपने भक्त का गुणगान करवाया, फिर दसवें अध्याय में वो तैयार हो गए द्वारका की ओर जाने के लिए। और द्वारका की ओर जाने लगे तो क्या अवस्था हुई सबकी, इसका वर्णन किया गया। ग्यारहवें अध्याय में उन्होंने प्रवेश कर लिया कि अब वो आ गए द्वारका में। तो अब शौनक ऋषि ने कहा कि बस अब तो भगवान आ गए द्वारका में, परीक्षित के जन्म का क्या हुआ उसका वर्णन कहाँ गया, वो तो कीजिए। तो फिर से कथा को उन्होंने मोड़ा, तो भगवान द्वारका आने के बाद फिर कैसे पांडवों का वर्णन हुआ कि कैसे धृतराष्ट्र, हम लोग देखते हैं कि विदुर, उन्होंने कथा सुनी और उन्हें पता चला कि कृष्ण चले गए हैं, तो फिर वो वापस आए और धृतराष्ट्र का गृह त्याग, धृतराष्ट्र ने घर को त्याग दिया। और फिर जब धृतराष्ट्र ने त्यागा तो अगले समय में, अगले अध्याय में हम देखते पांडवों ने भी समय पर सब त्याग दिया। तो फिर ऐसे पांडवों को त्याग करने के बाद उन्होंने परीक्षित को राजा बना दिया, परीक्षित राज्य करने लगे। फिर उन्होंने कली को देखा और कली को दंड दिया। कली को पहले राजा केवल गाय और बैल के संवाद को सुनते हैं, फिर अगले अध्याय में कली को दंड भी देते हैं और उसको रहने का भी स्थान दे देते हैं। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया और एक समय उनसे एक अपराध हो गया, उन्होंने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और फिर उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दिया। और फिर आखिरी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी के समक्ष पूर्ण समर्पण करते हुए अब वो भागवतम सुनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ये पूरा पहला स्कंद भागवत का समाप्त हुआ।